ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। 70वें राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर काठमांडू में सैनिक मंच टूरीखल में किया विशेष समारोह का आयोजन। देश की समृद्धि की यात्रा में अवरोध खड़ा करने वालों को परास्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने जताई दृढ़ता। चीन के वुहान से लाए गए सभी 175 नेपाली कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त है, स्वास्थ्य मंत्रालय का कथन। और पाकिस्तान के कराची शहर में रहस्यमय गैस लीक होने से दर्जन से अधिक लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा, देश की समृद्धि की यात्रा में अवरोध खड़ा करने वालों को परास्त करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 70वें राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर आज सैनिक मंच टूरीखेल में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि विकास, निर्माण, विदेशी निवेश जैसे समृद्धि के अभियान में अवरोध होने के बावजूद इससे समृद्धि की यात्रा में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि वर्तमान सरकार संविधान के अनुसार ही राज्य संरचना, संघीयता क्रियान्वयन, वित्तीय व्यवस्थापन और जनशक्ति का समायोजन करते हुए आगे बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने फागुन 7 गते को नेपाल के इतिहास में प्रकाशमय और नए युग की शुरुआत बताया। समारोह में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी सहित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा तथा अन्य मंत्रीगण उपस्थित थे। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा ने कहा, हम सभी को मिलकर जनता के प्रजातांत्रिक अधिकारों की रक्षा करनी होगी। 70वें राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर आज सुनसरी के धरान में आयोजित कार्यक्रम में सभापति देउवा ने कहा कि न्यायपालिका, सेना, प्रहरी और कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राप्त उपलब्धियों की रक्षा करते हुए देश को समृद्धि की ओर आगे बढ़ाने पर ही शहीदों के सपने पूरे हो सकते हैं। इसी तरह प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर मकवानपुर की हेटौरा में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा ने कहा कि यदि सरकार किसी पक्ष को राजनीति से निषेध करती है तो इसे प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा संकट माना जाएगा। साथ ही उन्होंने संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था को सबल, सुदृढ़, दीर्घ और सर्वमान्य बनाने के लिए सरकार को गंभीरतापूर्वक काम करने की जरूरत है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने चौथे निर्वाचन दिवस के अवसर पर आज निर्वाचन आयोग कांति पथ में आयोजित समारोह का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि लोकतांत्रिक गणतंत्र की रक्षा और इसके सफल क्रियान्वयन से देश को आगे बढ़ाने का जनमत प्रतिबिंबित होने वाला निर्वाचन आज की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि चुनाव को भरसक मितव्ययी, स्वच्छ, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाया जाना जरूरी है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने कहा, चीन से लाए गए 175 नेपालियों को कोरोना वायरस से मुक्त बताया है। आज काठमांडू में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मंत्रालय ने बताया कि वुहान से लाए गए सभी नेपालियों के नाक और गले का मेडिकल टेस्ट किया गया और किसी में भी कोरोना वायरस नहीं पाया गया। भक्तपुर की खरीपाटी में स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण के तालीम केंद्र में क्वारेंटाइन में रहे उन सभी का फागुन 18 को फिर से मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा और संक्रमण की पुष्टि न होने पर उन्हें अपने घर भेज दिया जाएगा। ये बात स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता महेंद्र प्रसाद श्रेष्ठ ने बताई। मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक वुहान से लाए गए 175 व्यक्तियों समेत कुल 210 लोगों की जांच की गई थी, जिनमें से सिर्फ एक व्यक्ति में संक्रमण पाया गया था और वो भी इलाज के बाद ठीक हो चुका है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब वक्त है व्यावसायिक विश्राम का।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटिसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कहा कि सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै कर्णालीको विशेष रूपले सम्बोधित गर्न चाहिए। आज सुर्खेत विमानस्थल पर आयोजित प्रेस कन्फरेन्समै अध्यक्ष प्रचण्डले यह बात कही। उन्होंने कहा कि भौगोलिक संरचनामै बदलाव बेशक किया जा सकता है, लेकिन बांके और बर्दियाको कर्णाली प्रदेशमै रखने के विषयमै फिलहाल कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा ने कहा कि सरकार दीर्घकालीन योजना के साथ आगे बढ़ रही है, इसलिए क्षणिक आलोचना से जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। आज गोरखापत्र दैनिक के कोहलपुर संस्करण का शुभारंभ करते हुए मंत्री बास्कोटा ने ये बात कही। साथ ही उन्होंने सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करने की बजाय सरकार के अच्छे कामों के बारे में विचार करने का भी आग्रह किया। आज ही कंचनपुर उद्योग वाणिज्य संघ द्वारा महेन्द्रनगर में आयोजित 13वें सुदूर पश्चिम प्रदेश स्तरीय औद्योगिक व्यापार मेला का उद्घाटन करते हुए मंत्री बास्कोटा ने कहा कि निजी क्षेत्रों को पारदर्शिता के साथ कर चुकाने और निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री पार्वत गुरुंग ने कहा कि देश की समृद्धि के लिए सरकारी संचार माध्यमों को मजबूत होना चाहिए। राष्ट्रीय समाचार समिति रासा के 59वें वार्षिकोत्सव समारोह में मंत्री गुरुंग ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के युग में सरकारी संचार माध्यमों को चाहिए कि वे राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार होकर प्रभावकारी और स्तरीय समाचार संप्रेषण करें, जिससे देश की समृद्धि में सहयोग होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के कराची शहर के कैमारी इलाके में रहस्यमय गैस लीक के वजह से एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है, लेकिन अभी तक गैस के स्रोत लीक के स्रोत का पता नहीं चल सका है। सिंध प्रांत के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि मरने वालों की तादाद 14 हो गई है। अधिकारी 2 दिन से ये बात लगाने में जुटे हैं कि ये गैस कौन सी है और कहां से निकल रही है। कैमारी इलाके के लोगों ने सांस लेने में दिक्कत, आंखें, गले और नाक में जलन और आंख से पानी आने की शिकायत की है। रविवार रात से अचानक लोगों को दिक्कतें शुरू हुई और उन्होंने अस्पताल जाना शुरू किया। सिंध प्रांत के नगरपालिका मंत्री नासिर हुसैन शाह ने बताया है कि अब तक 250 प्रभावित लोग अस्पतालों में भर्ती किए गए हैं, जिनमें से अधिकतर को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। मंत्री के मुताबिक ये घटना क्यों हुई है इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा शुरुआती रिपोर्ट आते ही मीडिया के जरिए लोगों को आगाह कर दिया जाएगा और भरोसे में लिया जाएगा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। 70वें राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर काठमांडू के सैनिक मंच टूरीखेल में किया विशेष समारोह का आयोजन देश की समृद्धि की यात्रा में अवरोध खड़ा करने वालों को परास्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने जताई दृढ़ता। चीन के वुहान से लाए गए सभी 175 नेपाली कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त है, स्वास्थ्य मंत्रालय का कथन। और पाकिस्तान के कराची शहर में रहस्यमय गैस लीक होने से दर्जन से अधिक लोगों की हुई मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए दीजिए आज्ञा। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।